फिर ब्रह्मा जी ने कम से कम 125 साल उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वास्ते किया, तो फिर ज्ञान दिता सी। आप दो दिन घरों नहीं, घरों आके तो कहने ला जी बाबा जी गम नहीं बनता साडा, साडे ते कृपा कर दो, है कृपा हुण जाना मैं किसी दिन नाभे लैके आनी इथों, और क्या करन साडा की लगता उत्थे, तो नाभे ना मिले तो पटियाले तो लै आवांगे, ठीक है ना। आ सुनो, अन्न में कोश आत्मा कितने पामर विरोचन मत के अनुसारी, पामर मैंने पामर पुरुष, पुरुषों की गिनती कराई सी ना उस दिन, कितने पुरुष होंगे, चार प्रकार के पुरुष है, केड़े केड़े, पामर विषयी और जिज्ञासु और मुक्त, चार प्रकार के पुरुष है। पुरुष मैंने स्त्री पुरुष सारे बिच आ गए भाई, स्त्रियां अपने अलग ना समझन, स्त्री पुरुष कहने का, पुरुष कहने का मतलब सब कुछ आ गया, चार प्रकार के पुरुष है, पामर विषयी जिज्ञासु और मुक्त। ये पामर पुरुष किनू कहते हैं, शास्त्र संस्कार से बिल्कुल रहित, शास्त्र संस्कार से बिल्कुल रहित, मेनू सुख चाहिए कैसे भी मिले, भले वेद विधि के हिसाब से मिले, भले विपरीत मिले, किसी की लुट खो करके मिले, मैं सुख चाहिए, कोई किसी नु मार के भी मेनू सुख मिले, सुख चाहिए, उन्होंने कहते पामर पुरुष, ठीक है। ये पामर पुरुष का लक्षण, कितने पामर विरोचन मत के अनुसारी, देखो विरोचन के चेले जिन्हों के अनुसारी मने, विरोचन के शिष्य चेले, केड़े चेले हुए, चेला ये नहीं होया कि जेड़ा तुहानू को गुरु गुरमंत्र दे तुसी ओदे चेले, आपां जेदे मत का अनुसरण करांगे ओदे चेले बन जावांगे, जेड़े मत का अनुसरण करांगे ओदे चेले बन गए, ते जे आपां विरोचन मत का अनुसार चलांगे ते किहदे चेले बने, विरोचन दे, ठीक है ना। वो इसलिए कह रहा है कितने पामर विरोचन मत के अनुसारी, स्थूल शरीर रूप अन्न में कोश को ही आत्मा कहे हैं। अब घटा लेना अपने दे कितने अहमित नहीं ओदे चेले, हां जी घटा लेना तुसी हुण, है कितने पामर विरोचन मत के अनुसारी, स्थूल शरीर रूप अन्न में कोश को ही आत्मा कहे हैं, और जह जुक्ति कहे, जुक्तियां केड़ियां दस दे, युक्ति सुन लो, कहिंदे जामे अहम बुद्धि होवे सो आत्मा है, मोटा जा सिद्धांत आंदा, जेदे विच अहम अहम पना आ जावे, जिनू लैके हम कहिए मैं कर दे, वही आत्मा है, इनू लैके मैं कर दे, मैं गया मैं आया, ते इहदा मतलब यही आत्मा है, ठीक है। सो अहम बुद्धि स्थूल शरीर में होवे है, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसी प्रतीति सर्व को होवे है, और मनुष्यपना ब्राह्मणपना और स्थूल शरीर में ही हुए है, ब्राह्मण स्थूल शरीर होगा, ठीक है ना, मनुष्यपना स्थूल शरीर में होगा, इसलिए स्थूल शरीर ही आत्मा है, जहां ते स्थूल शरीर ही अहम बुद्धि का विषय होने ते आत्मा है, किंबा जहां में मुख प्रतीति होवे सो आत्मा है, जहां ते मुख प्रतीति का विषय होवे तो वह आत्मा है, तो मुख प्रतीति के हो रही है स्थूल शरीर, ना ना स्थूल शरीर च नहीं हो रही, जामे मुख प्रतीति होवे सो आत्मा है, जहां ते मुख प्रतीति का विषय होवे तो वह आत्मा है, ते मुख प्रतीति केदे विच हो रही है स्थूल शरीर विच, ना ना स्थूल शरीर च नहीं हो रही, मुख प्रतीति आत्मा में हो रही है, ये तो मोटी बुद्धि है ना, अगर गंभीरता से विचार करोगे तो किथे जाएगी मुख प्रतीति, आत्मा में। कोई आदमी है बड़े विदेशों के विच जाके अरबां खरबां रुपया कमा लिया, उसने ओदे बेटे ते कोई केस पै गया, ते क्या करेगा, वो कह रहे जितने पैसे लगते ले लो, मेरे पुत्र नूं छड़ दो, ते पहला किहदे नाल प्रीति सी, पैसे नाल, ते फिर किहदे नाल आ गई प्रीति, पुत्र नाल, ते इहदा अर्थ हो गया पैसे दे नालों पुत्र अधिक प्रिय है, आ मुख प्रतीति जाना आपां, ठीक है। आ फिर दोवें पेपत खड़े हैं, ते किते कोई ऐसी गल बन गई, गोली चलन लग गई, ते फिर प्यो नहीं पुत्र नूं पछाणेगा, ना पुत्र प्यो नूं पछाणेगा, जिधर नूं मुख आया दौड़नगे, अपना स्थूल शरीर बचाओ, अपना आप बचाओ, ते फिर प्रीति किधर आ गई, पुत्र नाल किहड़ा प्रिय हो गया, स्थूल शरीर, ठीक है। ते जदों को मारन लगदा है, ते फिर आपां की करदे आ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੱਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਯ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਡੰਡ ਦੇ ਦਿਉ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਉ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਡੰਡ ਨਾ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਪ੍ਰਾਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਬਈ ਬਸ ਬਈ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਪੁਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਤ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੇ ਉਪਕਾਰਕ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਕਿਆ ਤੂੰ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਆ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਿੰਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਅੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਚਨ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਸਤਰ ਭੂਸ਼ਣ ਅੰਜਨ ਮੰਜਨ ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਭੋਜਨ ਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਬਸ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਅੰਜਨ ਪਹਿਣੇ ਸੁਰਮਾ ਮੰਜਨ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਭੋਜਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਖੂਬ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਠੂਸਾ ਠੂਸੀ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰੋਚਨ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਅਸੁਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰੋਚਨ ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ? ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਇਤਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਕਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਕਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੀ? ਪਾਲਦੇ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਭੁੱਖ ਸੇ, ਪਰ ਉਨਕੇ ਮੁੱਖ ਮੇਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਖਿਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਗੇ ਐਸੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਚੁੰਝਣਾ, ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀ ਭਾਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਅਬ ਇੰਦਰੀਆਂਵਾਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਬ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਇੰਦਰੀਆਂਵਾਦੀ ਆਤਮਕ ਮਤ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਹੇ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਤਮਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸੇ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਨੀਚੇ ਚਲ ਗਏ ਥੋੜਾ ਸਾ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਚਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਗਲਤ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, एक हाथ कटिया जाए किसी का तो वह मर जाएगा, जिंदा रहिंदा। किसी की इंद्री खराब हो गई है सुनने वाली तो क्या वह मर गया, किसी की देखने वाली खराब हो गई मरदा थोड़ी है। यही कह रहे हो जीवन मरण इंद्रियां के अधीन है, देख लो ये की कह रहा है, गलत बोल रहा है ना। जीवन मरण इंद्रियां के अधीन है, जितने काल शरीर में इंद्रियां होवे उतने काल में जीवन है, और को इंद्रियां ना होवे तो मरण कहिए है। और मैं देखू हूं, मैं सुनू हूं, मैं बोलू हूं, इस रीति से अहम बुद्धि भी इंद्रियन में होवे है। मैं सुन रहा, मैं देख रहा, मैं बोल रहा हाँ, ये सारी इंद्रियां ही है। कहता अहम बुद्धि इंद्रिया में हो रही है, इसलिए ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिया आत्मा है, जानते इंद्रिया ही आत्मा है। और हिरणगर्भ के उपासक का मत, हिरणगर्भ में ब्रह्मा जी, देखो कभी कभी तुहानू कोई कहेगा ना, तुसी सुनिया होगा सत्संग दे विच, कोई कदी कह रहे श्वासां दे नाल नाम जपया करो, श्वासां दे नाल मतलब श्वास अंदर आया तां जो तुहाडा गुरमंत्र जप लिया, बाहर गया तां जप लिया। कहन दा तात्पर्य श्वास दा ध्यान रखोगे, मन दा गहरा संबंध श्वासां नाल है, मन दा जिन्हों पक्की संबंध कहोगे ना, पक्का संबंध, गहरी मित्रता श्वासां दे नाल। तुसी 10 मिनट, 10 मिनट तो बहुत दूर दी गल, 10 मिनट कौन रोक सकता, तुसी अद्धा सेकंड जां दो अद्धा मिनट मन श्वास रोक लो, लंबा श्वास अंदर भर के छड़ना नहीं, बाहर रोक लेना, मन कितने नहीं जाएगा उतनी देर, जाएगा ही नहीं। जितनी देर तुसी श्वास नहीं छोड़ोगे मन कहीं जाने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि श्वास दे नाल मन दा बहुत गहरा संबंध है। जितना श्वास लंबा लै करके रोक लोगे उतनी देर, जिन्ना चिर श्वास रोकी रखोगे मन भी रुके रहेगा, अनुभव करके देखना, अनुभव करके देख लेना। तो जदों तुसी श्वासां दा ध्यान रख के नाम जपोगे सिमरन करोगे तो क्या हो गया, ब्रह्मा जी की उपासना हो रही है। श्वासां दा ना ध्यान रख के नाम जपोगे सिमरन करोगे तो किहदी उपासना हो रही है, ब्रह्मा जी की। असुर की करते सी, यही करते सी, इतने इतने साल खड़े रहिंदे सी, कितने कितने हजारां बरस एक पैर ते, ते की करदे श्वासां दा, ब्रह्मा जी नूं श्वासां नाल जाल कर देंगे सी। ते तुसी देख लेना अनुभव करके, जां फिर दूसरा तरीका, श्वास नहीं रोकना ते मन नूं नहीं रोकना, नहीं बस खाली बैठ करके देखना मन क्या कर रहा है, देखना थोड़ा जिहा अनुभव ते करो, फिर तुसी कहिंदे सानूं दस्सिया ही कुछ नहीं, लवा जे करके देखना, इन्हां दोनों चो जिहड़ा मर्जी कम करके देख लेना, श्वास लंबा श्वास लेकर के दीर्घ ते अंदर भर लेना, छड़ना नहीं, जितनी देर अंदर श्वास रहेगा मन कहीं जाने वाला नहीं है। जां दूसरा तरीका, मन नूं रोकना नहीं है, मन दे पिछे पिछे लगे रहना किधर नूं जा रहा है, देखना फिर मन दा सब कूड़ा कचरा कट के बाहर रख देगा, करो तो कुछ करना ही नहीं तो फिर की होगा। देखो सुरती गई कैसे, संकल्प विकल्प दे नाल गई ना, ओदा नहीं जा सकते, ओदा नहीं जा सकते, मन जाएगा देखना अनुभव करके, ऐसे आई भी मन संकल्प करेगा विकल्प करेगा तो संसार दे विच घूमना शुरू कर देगा, जां पिंड विच अपने च घूमना शुरू कर देगा, जां खेतां विच अपने च घूमना शुरू कर देगा। तो जिन्ना चिर मन रुकिया रहा, संकल्प विकल्प रुके रहे, उन्ना चिर उन्हूं कहिंदे भजन। भजन असनी केड़ा, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी नूं कह रहे हैं मन नूं समाहित कर करके तू फिर मेरा भजन कर। आपां मन नूं तां समाहित करदे नहीं, जपजी साहिब पाठ कर लिया, सुखमनी साहिब कर लिया, गीता पाठ कर लिया, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हां जी ना, तो फिर मन तभी तो संकल्प विकल्प होया, तो मन गया, मन का काम की है संकल्प विकल्प करके उथे पहुंचना, जे मन ने संकल्प विकल्प किया ताई तो गया उथे, चिंतन ओदा हो रहा, ऐसे नहीं जा सकता। देखना फिर आज करके, आज फिर करके देखना, ठीक है ना। हिरणगर्भ के उपासक प्राण को आत्मा कहे हैं। हिरणगर्भ में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जो उपासक है वो प्राण को आत्मा कहे हैं। ताके जाय जुगति कहे हैं। जब 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 मरण समय मूर्छा होवे है तब ताके संबंधी पुत्र आदिक प्राण शेष होवे तो जीवन जाने हैं, और प्राण शेष ना होवे तो मरण जाने हैं। ये कह रहा, ये कह रहा प्राणन मुख रख के जदों को बंदा मरण पै गया, मरण दे समय आया तो उदे प्राण तो हिसाब ला के कहिंदे आ जे प्राण चल रहे आ तो कहिंदे जिंदा है, जे प्राण बंद हो गए तो फिर की कहणगे मर गया। किंबा शरीर में इंद्रियां नहीं होवे तो अंधा शरीर रहे है, स्रोत्र से बिना बद्र शरीर रहे, बद्र माने बोला, वाक बिना मुंह को रहे है, मुंह माने गूंगा, गूंगा रहे हैं। ऐसे जो इंद्रियां नहीं होवे ताके विपार से बिना शरीर स्थित ही रहे है, प्राण से बिना तिस क्षण में शरीर शमशान के समान अमंगल भयंकर होके गिरे है। प्राण ना होवे तो उस समय गिर जाएगा। और मैं देखू हूं, मैं सुनू हूं, जहां रीति से भी इंद्रियां ते भिन्न ही आत्मा सिद्ध होवे है। काहे ते नेत्र स्वरूप मैं देखू हूं, श्रवण स्वरूप मैं सुनू। ए देखने सुनने वाली समझने वाली गल ए है, नेत्र स्वरूप मैं देखू हूं, ऐसे तो नहीं कहिंदे मैं नेत्र हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं कान हूं तो मैं सुन रहा हूं, ऐसे व्यवहार हुंदा भाई। ते की कहिंदे जे मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा, ऐसे कहिंदे है ना। तो फिर वो कह रहे भी देखने वाला जेड़ा सुनने वाला वो कोई और ही है, इंद्रिया तो कट रहा हो, इंद्रिया का खंडन करेगा ना, क्योंकि वो नीचे तक पहुंच गया, थोड़ा और नीचे पहुंच गया, वो थोड़ा नीचे पहुंच गया है। आप अजे कितने फिर स्थूल शरीर पे, ठीक है। श्रवण स्वरूप मैं सुनू हूं, श्रवण मैंने कान, मैं कान हूं मैं सुन रहा हूं, ऐसे तो नहीं कहते ना, ऐसे व्यवहार तो नहीं होंगे ना। जो ऐसी प्रतीति होवे सो इंद्रिया स्वरूप आत्मा सिद्ध होवे, किंतु मैं नेत्र वाला देखू हूं स्रोत्र वाला सुनू हूं, ऐसी प्रतीति होवे, मेरी अख है मैं देख रहा हूं, मेरे मेरा कान है मैं सुन रहा हूं, ऐसी होंगी प्रतीति। मैं नेत्र हूं मैं देख रहा हूं, ऐसे तो नहीं होंगी ना। जाते इंद्रिया ते बिन ही आत्मा है, और सुषुप्ति में सर्व इंद्रिया का अभाव है तो भी प्राण के होने ते जीवन व्यवहार होवे है। जाते जीवन मरण भी इंद्रिया के अधीन नहीं, किंतु स्थूल शरीर और प्राण के वियोग को मरण कहे हैं। मरण किनु कहते हैं, आंदे ए स्थूल शरीर और ए प्राण, इन्हों का जब वियोग हो जाएगा ना तब की कहांगे मर गया, ठीक है। जहां ते जीवन मरण प्राण के अधीन है और सोई आत्मा है, इसने कितना जोर लगा के देखो किनु सिद्ध कर दिता, ठीक है। अब मन आत्मवादी आ गया, कहिंदा नहीं नहीं मन आत्मा है, ठीक है ना। यह थोड़ा और नीचे चल गया, ओदे नाल और कोई ऐसे कहे हैं, प्राण जड़ है जानते घट की न्यायी अनात्मा है और बद्ध मोक्ष मन के अधीन है, ये गल ठीक है। बंधन और मोक्ष के अधीन है, मना एव मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष यो हो, वेद की सुरती भी कहती है। बंधन और मोक्ष मन के अधीन है, जड़ा समाहित मन है मोक्ष का कारण है, चंचल मन जो है बंधन का कारण है। हुण तुसी लगा लो तुहाडा मन किदां दा है, लगाओ ना कसौटी ते अपना परख लिया करो फटाफट। बंध मोक्ष मन के अधीन है, विषय में देखो विषयों में असक्त जो मन सो बंधन का हेतु है, विषय वासना रहित मन मोक्ष का हेतु है, ठीक है ना। वासना मैंने संस्कार, मन के संबंध ते ही इंद्रियां ज्ञान, मन के संबंध ते ही इंद्रियां ज्ञान के हेतु हैं। मन दा मन जेड़ी इंद्री दे नाल होगा वही इंद्री काम करेगी। मन अख दे नाल है, अख ठीक प्रकार से देख रही है। मन कान दे नाल है ते कान ठीक प्रकार से सुन रहा। हुण तुहाडा मन तुसी इत्थे बैठे जे जे एक क्षण वास्ते एक पांच मिनट वास्ते तुहाडा मन पिंड चल गया ते इत्थे मैं की बोल रहा कोई समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, क्यों। मन जेड़ी इंद्री दे नाल होगा वो इंद्री ठीक प्रकार से काम करेगी, ठीक है। मन के संबंध बिना इंद्रिया ते ज्ञान होवे नहीं। जिन्ना चर मन का संबंध इंद्रिया दा किसी इंद्री दे नाल नहीं है उन्ना चर ज्ञान नहीं हो सकता। जहां ते सर्ववार का हेतु मन है सोई आत्मा है। अब दूसरा आ गया विज्ञानवादी बहुत का मत। क्षणक विज्ञानवादी बहुत जह कहे हैं मन का व्यवहार बुद्धि के अधीन है। काहे ते बुद्धि ही आकार मन हुए है। बुद्धि का आकार ही मन है। जाते क्षणक विज्ञान स्वरूप बुद्धि ही आत्मा है मन नहीं। जह तिनका अभिप्रय है। संपूर्ण पदार्थ विज्ञान के ही आकार हैं। सो विज्ञान प्रकाश रूप है। जाते क्षण क्षण में विज्ञान के उत्पत्ति नाश हुए है। पूर्व विज्ञान के समान अन्य विज्ञान की उत्पत्ति हुए थे पूर्व विज्ञान का नाश हुए है। तैसे तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति थे द्वितीय ज्ञान का नाश। चतुर्थ की उत्पत्ति तृतीय का नाश हुए है। जाते जा रीति से नदी के प्रवाह की न्यायी विज्ञान की धारा बनी रहे हैं। एक एक ज्ञान नष्ट होया दूसरा उत्पन्न हो गया। एक नष्ट होया दूसरा उत्पन्न हो गया। दीवा देखा जलता आपने कभी गंभीरता से सोचा कैसे जल रहा हो कैसे जलता दीवा ओदी लो एक ही है कि बदल रही है पतली छान ओदी जड़ी लो है वो एक ही है जड़ी अपन जला दी सी कि जब प्रति क्षण बदल रही है जे बदलती ना हो तेल खत्म नहीं होना चाहिए। जे तेल खत्म हो रहा है यदा मतलब प्रति क्षण बदल रही है पर सानू की लगता वो ही जोड़ो दीपक अपना पहले जला दिया वो ही जल रहा है वो नहीं है। मैंने स्नान किया गंगा जी में जा आपने स्नान किया गंगा जी में तो बाद जो तुम बाहर आए दूसरा आदमी स्नान उसी स्थान पर गया करने क्या उसी गंगा में स्नान किया उसने की कहने आप मैं भी उसी गंगा से वो तो जल बहुत दूर चला गया भाई वो जल बहुत दूर चला गया जिस उसने स्नान किया तो दूसरे च स्नान किया। ऐसे जड़ा नदी का प्रवाह है ना ऐसे ज्ञान की धारा चल रही है बुद्धि की धारा ऐसे ही चल रही है। एक ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ दूसरा उत्पन्न हुआ दूसरा नष्ट हुआ तीसरा उत्पन्न हो गया ठीक है ना। एक सोव ज्ञान की धारा दो प्रकार की है। एक तो आलय विज्ञान धारा है दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान धारा। ये दो धारा मान रहे हैं। एक कहते जी संसार नु देखने वाली धारा है उनकी कहते प्रवृत्ति विज्ञान धारा। दूसरी एक आलय विज्ञान धारा जो आत्मा नु विषय करने वाली है उन्हू कहे आलय विज्ञान धारा ठीक है। अहम हम ऐसी विज्ञान धारा को आलय विज्ञान धारा कहे हैं। मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं केड़ी धारा होगी आलय विज्ञान धारा ताही को बुद्धि कहे हैं। जय घाट है जय शरीर है ऐसी विज्ञान धारा को प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहे हैं। पदार्थों का ज्ञान जो हो रहा है वह कि हो रहा प्रवृत्ति ज्ञान धारा। आलय विज्ञान धारा से प्रवृत्ति विज्ञान धारा की उत्पत्ति होवे है। मन का स्वरूप भी प्रवृत्ति विज्ञान धारा में है। जानते आलय विज्ञान धारा स्वरूप बुद्धि का कार्य है। सो बुद्धि ही आत्मा है। आलय विज्ञान धारा विषय प्रवृत्ति विज्ञान धारा का बाद चिंतन ते निर्विशेष क्षणक विज्ञान धारा की स्थिति ही तिनके मत में मोक्ष है ठीक है। इस रीति से विज्ञानवादी बुद्धि को ही क्षणक रूप से स्वयं प्रकाश रूप कल्पना करके आत्मा कहे हैं। और भट्ट का मत आनंदमय कोश ये और थोड़ा नीचे चला गया। ये आनंदमय कोश नु आत्मा कह रहे हैं। पूर्वी मानसा वातिकार भट्ट का जह कहे हैं। पूर्वी मानसा मैंने कर्मकांड जिन्हू कहते छे शास्त्र है ना जेड़ा कर्मकांड वाला शास्त्र है उन्हू की कहवांगे पूर्वी मीमांसा ठीक है। चार तीन भाग है ना वेद दे तीन कांड है ना केड़ा कर्मकांड उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड और उपासना कांड जिसमें आया उन्हू की कहवांगे यही क्या पूर्वी मानसा वो शास्त्र ना है पूर्वी मानसा। पूर्वी मानसा वार्तिकार भट्ट का जह कहे हैं भट्ट की कह रहे विद्युत की न्यायी क्षणक रूप आत्मा नहीं किंतु स्थिर रूप स्वरूप आत्मा जड़ स्वरूप और चेतन स्वरूप है। वो कह रहे देखो वो कह रहे जैसे खिद्युत हो है ना खिद्युत की उन्होंने कहते ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀ ਐਸੇ ਜਗਦਾ ਬੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਖਿਦਯੁਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਦਯੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੁਗਨੂ ਜੁਗਨੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਕਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਆਗੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਭੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਦਯੁਤ ਕੀ ਨਿਆਈ ਕਵੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਨ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੜ ਭਾਗ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਜਾਂ ਜਹ ਤਾਂ ਕਾ ਵਿਪਰਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਹ ਕਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਤਾ ਵਿਆਹ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਣਾ ਸੋਤਾ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਜੜ ਭਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਤਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗੇ ਕੁ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਕੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭਿੰਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੇ ਔਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਕਾ ਹੇਤੂ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੋ ਆਤਮਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਖਿਦਯੁਤ ਕੀ ਨਿਆਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਿਦਯੁਤ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜੜ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਜੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਦਯੁਤ ਦਾ ਪਿਛੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਚਮਚਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਗੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜੜ ਹੈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਔਰ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਆਨੰਦਮੇ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਕਾਹੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਮੇ ਚੇਤਨ ਕੇ ਆਭਾਸ ਸਹਿਤ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਤਾਂਕੂ ਆਨੰਦਮੇ ਕੋਸ਼ ਕਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਭਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਭਟਕੇ ਮਤ ਮੇ ਆਨੰਦਮੇ ਕੋਸ਼ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਮਾਧਿਕ ਬੌਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਆਨੰਦਮੇ ਕੋਸ਼ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਨਵਾਦੀ ਬੌਧ ਜਾਏ ਕਹੇ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨਿਰੰਸ਼ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਭਾਗ ਨੀ ਉਸਮੇ ਅੰਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰੰਸ਼ ਮੈਣੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਭਾਗ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਏਕ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਿਦਯੁਤ ਕਾ ਤੋ ਏਕ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅੰਸ਼ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਖਿਦਯੁਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਚਮਚਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਗੇ ਵਾਲਾ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਐਸੇ ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਈ ਅੰਸ਼ ਰਹਿਤ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਭੇ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਸ਼ਾ ਅੰਸ਼ੀ ਭਾਵ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਭੇ ਰੂਪ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਅੰਸ਼ ਸਹਿਤ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਘਟਾ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਤਪਤੀ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਸਹਿਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਤਪਤੀ ਸੇ ਪੂਰਵ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਸੇ ਅਨੰਤਰ ਅਸਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਸੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਘੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਸਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਆਤਮਾ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਅਸਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਦਿ ਅੰਤ ਮੈਂ ਅਸਤ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਮੱਧ ਵੀ ਅਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਸੇ ਭਿੰਨ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪਤੀ ਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਅਨਾਤਮ ਸਮਗਰ ਵਸਤੂ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਨ ਹੀ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਨਵਾਦੀ ਮਾਧਵਿਕ ਬੌਧ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸ਼ੁਨ ਮੈਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਜਦੋਂ 12-1 ਵੱਜਣ ਦਾ ਤੇ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਨ ਇਹ ਸੁਨ ਨਹੀਂ ਇਹ 0 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਨ ਉਹ ਸੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਨ ਮੈਨੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ।